अभी तक जितनी आयत हमने देखी, अगर उसका एक हल्का सा खुलासा करके फिर आगे चले, तो हम कह सकते हैं कि इस रुकू के आगाज़ में हमने अल्लाह ताला की तौहीद की बात देखी। पहले हुक्म दिया गया कि उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला चाहते तो सिर्फ हुक्म ही दे देते, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उसकी वजूहात बताई, दलाइल दिए गए कि क्यों अल्लाह की इबादत करो। क्योंकि उसने तुमको पैदा किया, वो तुम्हारा रब है पहली बात। फिर उसने तुमको पैदा किया तुमसे पहले, यानी तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया, आसमान से पानी नाजिल किया। उस पानी के ज़रिए से फल रिस्क के तौर पर तुम्हारे सामने पेश किए। लिहाजा इतना कुछ देने वाली ज़ात का हक क्या है कि फला तजअलू लिल्लाहि अंदादं व अंतुम तालमून, के पस तुम अल्लाह के साथ शरीक न बनाओ हालांकि तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ही है। कोई देवी या कोई देवता, कोई अवतार, कोई अल्लाह का प्यारा ऐसा नहीं है जो इन सारे कामों के अंदर अल्लाह ताला की मदद करता है। लिहाजा मान जाओ कि वो रब एक है, तुम उसका कोई निद ना बनाओ। अंदाद हमने देखा था, निद की जमा है, और निद मद्दे मुकाबिल को भी कहते हैं कि जो किसी के बराबरी पे आ जाए। और हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम को एक मौके पे एक सहाबी ने ये कह दिया कि वही होगा जो आप चाहेंगे और अल्लाह चाहेगा। तो इस पे नबी सल्लम ने फरमाया कि अजालतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह के लिए शरीक बनाता है? हालांकि बल माशा अल्लाह वहदा, होगा वही जो एक अल्लाह चाहेगा। इससे पता चलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान ना समझी में और मोहब्बत में या थोड़ी सी एग्जेजुरेशन में भी कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जो इंसान को शिर्क तक ले जाती है। हमारी ज़ुबानों में भी ये जुमला बोला जाता है कि जो अल्लाह चाहेगा या अल्लाह का रसूल चाहेगा। तो ये जुमला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसी तरह बास लोगों के मुंह से मैंने एक चीज़ सुनी है, और जब उनको बहुत शौक़ होता है हज या उमरे के लिए जाने का, तो कहते हैं देखते हैं कब अल्लाह और उसका रसूल बुलाता है, तो रसूल नहीं बुलाता। इसी तरह कुछ नातों को अगर आप गौर से सुने तो उसमें भी यही लिखा होता है कि मदीने वाले ने बुलाया है और मैं आई हूँ, और कमली वाले ने बुलाया। ख़ास तौर पर नातों में ये शिर्क बहुत है कि जो अल्लाह ताला के तसर्रुफ़ में शिर्क हो। शिर्क इंशाल्लाह बहुत सारी किस्में हम आगे डिटेल से पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि किसी को ऐसे काम में शामिल कर लेना जो सिर्फ अल्लाह का काम है, तो ये शिर्क फिल तसर्रुफ होता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें पता है कि मेरे सिवा कोई और नहीं है जो तुम्हारे इन कामों को करे। किसी को कुछ करना होता तो हिदायत देते, और अल्लाह के नबी तो वो भी नहीं कर सके, और नहीं कोई कर सकता, क्योंकि अल-हादी तो अल्लाह ताला का नाम है। इसके बाद फिर आयत नंबर 23 से रिसालत और कुरान पाक की सच्चाई की बात हो रही थी, जहाँ पे हमने थोड़ा सा रुक के तिलावत सुनी थी। अल्लाह ताला कहते हैं वइन कुंतुम फी रैबे मिम्मा नज़लना अला अब्दीना फातु बिसूरतिम मिम मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम शक में हो किस बात से, उससे जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पे, तो क्या करो, पस ले आओ एक सूरत इसी जैसी। अकेले ना कर सको तो क्या करो, वदु शुहदा अकुम, अपने गवाहों को बुला लो, अपने हमायतियों को और अपने मददगारों को बुला लो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। किस दावे में सच्चे हो? कि हम भी ऐसा कलाम बना सकते हैं। और दूसरा उनका दावा ये था कि ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, अल्लाह का नहीं है। फिर साथ ही नतीजा भी बता दिया गया कि फ़इल्लम तफ़लू, देखो सोच लो कि तुम नहीं बता सकोगे, वलन तफ़लू, और हकीकत में तुम नहीं बता सकोगे, तो फ़त्तकुन्नार, पस बच जाओ उस आग से। कौन सी आग? अल्लती वकूदुहन्नास, जिसका ईंधन लोग होंगे, वल हिजारा, और पत्थर होंगे, उद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। इसी एक आयत में बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात हो सकती है। पहली बात लफ्ज़ रईब पे करेंगे। रईब शक है इसका तर्जमा, लेकिन रईब ऐसे तरद्दुद और वहम को कहते हैं जिसकी बुनियाद कोई ना हो, और थोड़ा सा गौर व फिक्र करने से वो दूर भी हो जाए। कुरान पाक खुला तो जालिकल किताबु ला रईब फीह में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। गोया के पता क्या चला कि कुरान पाक पर जो भी शक करेगा बस वो उसका वहम है, ये बेबुनियाद शक है। ये अपनी सिर्फ दिल की भड़ास को निकालने की बात तो हो सकती है, लेकिन असल में कुरान पाक में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सॉलिड बेस पर कोई शक कर सके। ठीक है, फिर अगली बात पता चलती है इस एक लफ्ज़ रईब पे गौर करने से कि थोड़ी सी कोशिश की जाए तो लोगों के दिलों से कुरान पाक के बारे में शक निकल सकता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही अहले इल्म से रैब की नफ़ी भी की है, यानी इल्म वाले लोग जो हैं वो शक से पाक होते हैं। कुरान पाक में आता है वला यरताब अल्लज़ीन ऊतुल किताब वल मुमिनून, और नहीं शक में आते वो लोग जो अहले किताब हैं और ईमान वाले हैं। तो पता क्या चला कि इल्म के ज़रिए से शक दूर होता है। किसी भी के बारे में शक हो तो जब आप उसको उस चीज़ का सॉलिड इल्म दे देंगे, सही उसके बारे में खबर दे देंगे, तो शक जो है वो दूर हो जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जो शक है तुम उसको अगर दूर करना चाहते हो तो कर लो। कैसे, किस चीज़ पर शक है? मिम्मा नज़ल नाला अब्दीना, इस पे हमने बात की थी कि अल्लाह के नबी को यहाँ अब्द कहा गया और कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया, इस दो बातों की खबर इस एक जुमले में मिल गई। कुरान पाक में ये चैलेंज 5 मरतबा है। एक तो इसी जगह पे है, क्या कि फातु बि सूरत मिन मिस्लिही, एक सूरत ले आओ, चलो छोटी सी ले आओ। ये चैलेंज कुरान पाक में मौजूद है। सूरत तूर की आयत 33 और 34 है, और सूरह बनी इसराइल की आयत 88 है, सूरह हूद आयत 13 है, और यूनस 38 है। आप इन सब के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें। आपका काम क्या है कि घर जाके तर्जमे वाले कुरान से इन आयतों का तर्जमा अपने खुद लिखना है, क्योंकि मैं बोल भी दूंगी तो आप जल्दी में पूरा नहीं लिखेंगे। कभी भी कोई आयत कोट करवाऊँ तो उसका तरीका नोट कर लीजिए कि थोड़ी सी जगह छोड़ दें साइड पे, जैसे आपको नोट्स लिखने के स्टाइल में बताया गया था, साइड पे सूरत और आयत का नंबर लिख दें और जगह 2 लाइनों की छोड़ें। बाद में शाम को आप जाके घर में होमवर्क करते हुए उसमें उन आयतों को नोट करें, लेकिन आपको इन 4 आयतों से ये पता चल जाएगा कि इनको 10 आयतों की भी दावत दी गई, जिन नोइंस मिलके इस कुरान जैसी आयत कोई सूरत निकाल लें, फिर कहीं कहा कि चलो एक ही आयत ले आओ, लेकिन किसी जगह भी वो कुछ ना कर सके। यानी अल्लाह ताला ने ऐसी बात कह दी कि जिसको क्यामत तक कोई भी नहीं पूरा कर सका। कोई तुम सेमिनार बुला लो, मीटिंग्स बुला लो, हक को हटाने के लिए जो कोशिश कर सको, अकेले ना कर सको तो दूसरों को बुला लो, लेकिन आज ही अल्लाह ताला बता देते हैं कि फाइल लम तफलू वलन तफलू, यू विल नेवर डू इट, तुम नहीं कर सकोगे। देखिए कि अगर कोई कुरान पाक जैसी कोई किताब बना सकता ना, और ये चेंजेबल होता, एडिटेबल होता, तो फिर हर साल कुरान पाक का नया वर्जन आता और साथ ये हवाला लिखा होता कि ये इस साल के वर्जन में है। आप में से कभी किसी को कोई कोटेशन तौरात या इंजील, यानी जिसको आज के दौर में बाइबल कहते हैं, किसी भी किताब में, क्रिश्चियनिटी रिलीजन की आप कोई किताब खोलें, जब वो अपनी किताब का रेफरेंस देते हैं तो साथ उसका ईयर भी लिखते हैं, वर्जन लिखते हैं कि ये इस साल की बाइबल के अंदर ये बात लिखी है, क्योंकि उसमें इंसानों ने अपनी मर्जी से चेंजेस की और हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका वादा नहीं किया था हिफाजत का। तो लिहाजा यहाँ कुरान पाक के लिए वो दावा कर दिया गया जो हकीकत में एक ऐसी ज़ात का दावा हो सकता है जिसको अपने कलाम के मुकम्मल होने का यकीन हो। इसके बरक्स आप देखते हैं, कोई किताब आप खोलें तो उसमें शुरू में लिखा होता है, कोई गलती देखें तो हमें बताइएगा। कुरान पाक जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था आज तक वैसा ही है, एक ज़बर क्या एक ज़ेर नहीं बदली। और इस पे लोगों ने हसद भी किया, क्रिश्चियंस को इस चीज़ पे हसद आया था एक मौके पे, तारीख में ऐसा वक्त गुजर चुका कि उन्होंने जब देखा कि हम देखते हैं कि कुरान पाक में कितनी कंट्राडिक्शन है, कितनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन्होंने तो अपनी बाइबल को भी जमा किया और 2 लाख से जायद कंट्राडिक्टरी चीजें जमा हो गई। और जब उन्होंने पूरी दुनिया के कुरान पाक जमा किए तो उसमें से किताबत की एक दो गलती के सिवा कोई भी चीज उनको नहीं मिल सकी। पूरा रिकॉर्ड जमा किया गया था, फिर उस इमारत को आग लग गई, लेकिन उसके बाद जो फिगर्स थोड़े बहुत सामने आए तो उन्होंने बताया कि हम कुरान पाक के पूरी दुनिया से हासिल किए हुए नुस्खों मुख्तलिफ अदवार में आज के माजी के लिखे हुए, लेकिन हमें कहीं भी कोई गलती या कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं दिखी। ये अल्लाह ताला के कलाम की खूबी है, इंसान बात करके भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी ऐसा काम नहीं करती। फिर यहाँ देखिए, वदउ शुहदा अकुम, बुलाओ अपने साथियों को। शुहदा शाहिद की जमा, हाजिर के मानी में भी आते हैं, गवाह के मानी में भी आते हैं। यहाँ मुराद हैं दुनिया में सारे लोग। कुछ कहते हैं इससे मुराद उनके बुत हैं, जिनके बारे में ये कहते थे कि कयामत के दिन ये हमारे बारे में गवाही देंगे। और अरबों का एक उनकी एक आदत थी, कुरैश का ख्याल क्या था कि शोरा के पास जिन्नात होते हैं, शायर जो बहुत ही मेलोडियस कलाम पेश करते हैं ना, रिदमिक, बहुत शायरी जिसमें एक हुसन होता है, तो वो इस तरह की चीज़ों को पेश करते हैं, तो वो कहते थे कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ज़रूर कोई शायर होगा। इसी बात को सामने रखते हुए कहा गया कि जाओ फिर तुम किसी जिन को बुला लो, इंसान को बुला लो, किसी किसी को भी बुला लो और कुरान पाक की जैसी एक आयत ले आओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं ला सकोगे। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इतना यकीन है अल्लाह ताला को इस बात पे, तो आखिर कुरान पाक में कोई ऐसी खूबी तो होगी ना कि जिसकी बुनियाद पे कोई इंसान कोशिश के बावजूद भी इस जैसा कलाम नहीं बना सका, तो वो क्या है? हम 10 पॉइंट्स देखेंगे, सिर्फ आप पॉइंट्स के नंबर ही लिख लें, यानी मीन उसकी हेडिंग्स लिखेंगे, तो आप ज़रूर इस चीज़ का इकरार करेंगे कि कुरान पाक जैसी कोई चीज़ वो क्यों ना ला सके। आखिर क्या वजह है? तो एक किताब ही ना, अभी तो आपका ये सफ़र शुरू हुआ है ना। इंशाल्लाह ताला आप जितना कुरान पाक के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, कई मौके पे आप बेसाख्ता कह चुकेंगे कि वाकई ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। और इसका इजहार उन लोग उनके दौर में भी हुआ था। एक उस दौर का रिवाज क्या होता था कि पूरे साल के बाद एक कंपटीशन होता था, फिर जिस शायर का कलाम बहुत अच्छा होता था उसको खाना काबा की दीवार के साथ लगा देते थे और पूरा साल वो वहाँ लटकता रहता था, गोया कि एक जैसे अवार्ड विनिंग कैफियत होती है, कोई उनको एक खूबी उसकी होती है, सब लोग उसको देखते, जैसे कोई भी एक साल के लिए नॉमिनेट हो जाता है, चुना जाता है। तो उस वक़्त उन्होंने ये लिखा था, और जब सूरत कौसर नाजिल हुई थी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर, इस कलाम के हुसन से वो इतना मुतासिर हुए कि जब उसको वहां लिख के लगाया गया तो एक शायर था उनका, उसने आके इसके आगे एक जुमला बढ़ा दिया था कि वल्लाही मा हाजा कलामुल बशर, कि अल्लाह की कसम ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और हकीकत है, चंद दिन पहले भी किसी ने मुझे एक ईमेल भेजी और गाड़ी थी तो उसमें आग लग गई, बहुत यानी गाड़ी दिखाई हुई थी ब्रोकन कैफियत में, और लेकिन उसके अंदर कुरान पाक का नुस्खा रखा हुआ था तो वो बिल्कुल ठीक रहा। पूरी गाड़ी इंजर पिंजर हुई हुई थी, उसकी बेशुमार तस्वीरें उन्होंने भेजी, लेकिन बाहर से जिल्द थोड़ी सी उसको धुआं सा जैसे लगा होता है, लेकिन अंदर से सफ़े बिल्कुल ठीक थे। ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत उसने करनी है। आपको पता है कि तारीख में ऐसे ऐसे दौर गुजरे मुसलमानों पे कि लोगों ने हसद की वजह से कुरान पाक के पूरे नुस्खे जला दिए, ऐसे जालिम हुक्मरान भी दुनिया में गुजर चुके। इसके बावजूद जब उस बादशाह ने रात को गुजरते वक्त कहीं से कुरान पाक की आवाज़ सुनी तो अपने कारिंदों को कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे तो तुमने कहा कि मैंने सारे नुस्खे जला दिए, हालांकि मुझे तो अभी आवाज़ आई है पढ़ने की। तो उस वक्त उसके लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, हमने वो नुस्खे तो जला दिए जो कागजों में लिखे हुए थे, लेकिन इस उम्मत के तो सीनों में कुरान लिखा हुआ है, इनको हम कैसे मिटाएं? ये वो कलाम है, आप इसकी एक एक आयत जो रोज याद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप अपने सीने को बढ़ा रहे हैं, आपकी वसत बढ़ जाएगी, आप फील करेंगे कि आपकी मेमोरी शार्प हो गई, आपको अपनी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वो दूसरी चीज़ें इससे ज़्यादा अच्छी याद होनी शुरू हो जाएंगी। कुरान का ये एक इम्तियाज़ है जिसमें कोई दूसरी चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो बहरहाल अल्लाह ताला, और ये भी ध्यान में रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है, बाकी अंबिया कराम को जो मौजजात दिए गए थे वो वक्ती तौर पे होते थे, बस नबी के सामने हुआ और फिर ख़त्म, नबी के फौत होते ही वो मौजजा ख़त्म। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा आगे आप पढ़ेंगे, यदे बैजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजजात, आज उनका कोई भी अमल दखल नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजजा है वो क़्यामत तक रहेगा। बल्कि एक बड़ी अजीब सी रिवायत है, लामा जलालुद्दीन सयूती हैं और जलालैन बहुत मारूफ इनकी तफसीर है अरबी की, अभी उसका उर्दू तर्जमा तो नहीं मैंने देखा, तो उन्होंने अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मौजज़े हैं, एक क्या है कि कुरान पाक क़यामत तक बाकी रहेगा, और दूसरा मौजज़ा उन्होंने जो लिखा वो कहते हैं कि अबू सईद अल खुदरी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लम से कि अल्लाह के नबी हर साल हाजी जमरात में आते हैं, यानी हज के दौरान जमरात पर पत्थर मारते हैं, आप लोगों को पता होगा रमी जमार जिसको कहते हैं, कि लाखों हाजी आते हैं और 3 रोज तक मुसलसल कंकरियां फेंकते रहते हैं, वो वहां से तो कंकरियां लेके आते हैं मीना से, लेकिन कभी किसी को वहां से कंकरियां वापस ले जाते हुए नहीं देखा, ये कैसे होता है? यानी आप सोचिए ना, अगर आप लोग भी हैं, हम भी हैं, वहां पूरे पूरे ढेर लग चुके होते हैं। अब अल्लाह आलम सऊदी हुकूमत करती होगी, दूसरे करती होंगे, लेकिन तारीख में ऐसा भी दौर गुजरा था कि कोई इसके निशान पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने कहा ये बताएं कि ये सारी कंकरियां जाती किधर है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि ये कंकरियां जो हैं अल्लाह ताला जो है कुछ ऐसी मखलूकात के जरिए से वापस फिकवाते हैं। वल्लाह आलम किसी की कबूल होता है या नहीं होता, लेकिन कुरान पाक का जो मौजजा है ये हकीकत में बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहली बात कुरान पाक के मौजजा होने में क्या है, इस एक किताब के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वो सारे उलूम मौजूद हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ किताबों में आपको दिखते हैं। मसलन अगर आप कुरान पाक पढ़ लेते हैं ना, तो आप इंशाल्लाह ताला हर उस इल्म को थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं जो दुनिया में मौजूद है। साइंस की बातें आपको इसमें मिलेंगी, ज्योग्राफी की बातें, ज़मीन के घटने बढ़ने की बातें आपको इसमें मिलेंगी, दुनिया के अंदर क्या कहाँ हो रहा है। और आप सोचिए ज़रा, ये किताब नाजिल कहाँ हो रही थी? मक्का में बद्दू, ऊँट चराने वाले, बकरियों को हांकने वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबानों से इतना प्यारा कलाम पेश कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें तो पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, 7 साल की उम्र भी नहीं हुई थी कि माँ भी चली गई, फिर उसके बाद आप देखिए दादा, फिर चचा, एक बच्चा जो इतने मुख्तलिफ हालात का शिकार हो कि ना वो स्कूल जा सका, ना किसी इदारे में उसने दाखिला लिया, लेकिन एक उम्मी शख्स की ज़ुबान से अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल करवा दिया, क्या ये मौजज़ा नहीं है? आज हम में से कोई यहाँ बैठा हुआ कहे कि मैं कुरान नहीं पढ़ी हुई, या मैंने उर्दू नहीं पढ़ी, या मैं किसी स्कूल नहीं गई, और एकदम कल वो उठें और वो ऐसी फरफर बातें सुनाएं कुरान की, या कोई ऐसा कलाम उनके पास हो, तो मेरा ख्याल है कि हैरत की बात तो होगी ना। अल्लाह के नबी का उम्मी होना इस कुरान पाक की सच्चाई की दलील है, क्योंकि इंसान किसी को भी कोई अच्छा काम करता देखता है तो फौरन पूछता है इसका उस्ताद कौन है, ये किन का बच्चा है, इसकी माँ कौन थी। अल्लाह के नबी के बारे में जब लोग ये सवाल करते होंगे तो सबका जवाब नफी में था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। हत्ता कि जब गारे हिरा में इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी की आयात आई तो अल्लाह के नबी ने जिब्राइल के साथ साथ नहीं पढ़ा। मुफसरीन कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी उनके पीछे पीछे दोहरा लेते इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक को, तो जिब्राइल आपके उस्ताद हो जाते, और उस्ताद की तज़ीम की वजह से फिर आपको जिब्राइल का इतना अदब करना पड़ता कि आपके नबूवत के कामों में खलल आता। इसलिए जब उन्होंने कहा पढ़ो तो अल्लाह के नबी आगे से क्या कह रहे थे, मा ना बी कारियन, मैं कारी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने कहा पढ़ो, फिर जब उन्होंने आपको सीने से लगाया, भेजा, तो आपके सीने को अल्लाह ने खोल दिया, फिर उसके बाद आपकी ज़ुबान पर आयतें ऐसे नाजिल हुई कि जैसे आपको पहले से आती थी, और हमेशा ऐसा ही होता था, कभी इस तरह डिक्टेट नहीं करवाया आपको जिब्राइल ने कि पढ़िए ये आयत और मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराए, चले इसके मखारिज मैं आपको बता दूं, इसको कहाँ खींचना, कुछ नहीं था। ये अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, سورہ قیامت میں آتا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان پہ آنا اور اس کا پیش کرنا. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کیا گیا. پھر دوسری وجہ اس کی کیا تھی, قرآن پاک کے اندر جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مستقبل کی خبریں دیتی ہیں, قیامت کے آنے کی باتیں. پھر آپ دیکھیے کہ روم اور فارس کے مقابلے میں اہل فارس غالب آئیں گے, پھر رومی مغلوب ہو جائیں گے, سورہ روم کے اندر آتا ہے. تقریباً 9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر جو تھی ان کو دے دی تھی. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کہاں سے آئیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کی خبر قرآن پاک میں موجود تھی. تو اس وجہ سے بھی لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک وجہ اور کیا ہے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی, کہ اس میں پچھلی امتوں اور قوموں کی کہانیاں موجود ہیں. مکہ والے بالکل نہیں جانتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون ان لوگوں کا دور نہیں پایا, لیکن قوم نوح سے لے کے پوری پچھلی قوموں کی کہانیاں قرآن پاک میں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر اس طرح ایک اور وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع مل گئی. لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ آیتیں آ جاتی تھیں. سورت آل عمران کی آیت 122 میں آتا ہے, اس ہمت طائفتانی منکم ان تفشلا, جو تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. غزوہ احد کے موقع کی بات تھی. اب انہوں نے آ کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا, بنو سلمہ اور ایک دوسرا قبیلہ تھا, کہ کیا ہم پیچھے ہو رہے ہیں یا ہمیں ڈر لگ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو فوراً پتہ چل گیا. پھر اسی طرح مکہ والوں کی ایک بات کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول, وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اب یہ تو ان کے دل کی باتیں تھی, تو جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آ جاتی تھی تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کچھ لوگوں کو چیلنج کیا, لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. مثلا یہود کے بارے میں پہلے ہی پارے کے آخر میں آئے گا کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو تو چلو جاؤ موت کی تمنا کرو. جب تم کہتے ہو کہ مرتے ہی ہمارے لیے جنتیں تیار ہیں تو دنیا میں مغلوب کیوں ہو رہے ہو. لیکن ساتھ ہی کہا ولئن یتمنوہ ابدا, یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. آیت نمبر 95 ہے سورہ بقرہ کی, کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اور واقعی انہوں نے نہیں کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کیفیت جو قرآن پاک کو پڑھتے ہی محسوس ہوتی ہے, ہر بندے کے دل پہ اس کا ایک اثر آتا ہے. کوئی اس کو سنے کوئی نہ سنے, جبیر بن معتم ایک صحابی تھے, اسلام ابھی نہیں قبول کیا. ایک دفعہ اتفاق سے ایسی جگہ سے گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے, اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل اڑنے لگا ہے, اور یہ پہلا دن تھا کہ جب میرے دل میں اسلام گھر آیا. اور وہ آیتیں کیا تھی, ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم مستیترون, کیا وہ خود بن گئے ہیں آپ ہی آپ, یا وہی ہیں بنانے والے, یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین, کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے, کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے ہیں یا وہی داروغہ ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور اعجاز کیا ہے کہ بار بار آپ اس کو پڑھیں تو نہ اکتاتا ہے نہ اس سے تھکتا ہے. دیکھیے آپ ذرا کوئی دور جاہلیت کا وقت یاد کیجئے, جب آپ کو کوئی گانا بڑا پسند تھا, آپ اپنا فیورٹ سانگ کتنی دفعہ سن سکتے ہیں. جب نئی سی ڈی یا کیسٹ آتی ہوگی تو اس وقت آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو پورا سن کے ہی سوئیں. پھر ایک دن آپ گاڑی میں سن لیتے ہیں, پھر دوسرے دن سن لیتے ہیں, تیسرے دن, کیا مسلسل ایک ہفتے کے بعد آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سنا جاتا. آپ کو ایک فلم بڑی پسند آئے, آپ ایک دفعہ دیکھیں پھر دو دفعہ دیکھیں, کیا بار بار دیکھ سکتے ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیکھیں, مثال دے رہی ہوں کہ اس طرح سے دل بھر جاتا ہے نا. ایک ناول آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر دوبارہ بور ہو رہے تھے پھر اٹھا لیا, پھر کچھ نہیں ملا, تیسری دفعہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا پڑھنے کو. لیکن قرآن پاک میں اتنی خوبی ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جائیں اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے, اور कभी नहीं कोई उकताता। कितनी दफा आपने तिलावत सुनी होगी, मुसलसल गाड़ियों में चलती रहती है, लेकिन इसका हुसन जो है वो कानों को अच्छा लगता है। फिर अगली वजह ये कि कुरान पाक की किसी आयत में कोई तब्दीली नहीं हुई आज तक, वही बात कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर से कमी बेशियों को बिल्कुल अलग कर दिया है। ये कितनी बड़ी एक बात हो सकती है जिस पे गौर किया जाए। फिर इसी तरह एक और वजह ऐसी है कि कुरान पाक में इंसान के अंदर की बातें, यानी जो आप कह सकते हैं कि इंसान की असल हस्ती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ इंसान खुद ही जानता है, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ऐसा है। नुतफे से लेके इंसान के दुनिया में आने तक की मुख्तलिफ कैफियात ऐसी बयान कर दी गई कुरान पाक में कि जिसको पढ़ने और सुनने के बाद एक इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि ये किसी इंसान का कलाम है, वो फौरन सोच लेता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो उसने रखा था और इसी को रखा। तो बहरहाल इस तरह की और काफ़ी चीज़ें जहन में आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.